पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पहले इनका बताते हैं, देखिएगा ये ज्ञान का स्वरूप बताया है प्रश्न नंबर 10 पे। यहां क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, असत स्वरूप मैं नहीं हूं, ब्रह्मो वाम अहम वह ब्रह्म मैं ही हूं, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। इनका ये विधान है, मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी अवय और निर्विकार हूं, मैं दुखहीन आभासहीन विकल्पहीन व्यापक और व्यापक हूं, देह मैं नहीं हूं, मैं सुखी दुखी संसारी सथूल क्रिस आदि समस्त अध्यायों से परे हूं, सर्व रोग रहित मैं निरामय निराभास तथा व्यापक हूं। ठीक, अब 15 पर देखिएगा, इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है, एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या, मैं आत्म स्वरूप हूं अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहां थोड़ा सा गुमा गए, ये मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूं ये कहना था, मैं आत्म स्वरूप हूं पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूं, इसका अर्थ यह है। ये थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं, ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा संकर्पांश के ये अप्रोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहां चल रहा है इसके अंदर ही। इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूं, ठीक हो गया। फिर यहां लिखा है 46 पे, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म ही हूं, यह सद्वर्ती से जो परम परमानंदायिनी निरालम सतीति है उसे ध्यान कहते हैं। यो इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं भगवान ही हूं। अब आते हैं 71 बेहतर पर, ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है यहां देखिएगा, किंतु असंग सचिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व आत्म सर्व अंतर्यामी चिदा का स्वरूप हूं मैं ही, मैं देह पुरुष मैं देह हूं पुरुष हूं ऐसा नहीं, ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं हूं, किंतु ये है आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, मैं स्वयं भगवान ही हूं, जीव के विषय ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण क्रम बंधनों से वह ज्ञान ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब बेहतर पर देखियो, ये बेहतर प्रश्न है आत्मबोध का। शंकर पंथकम, इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निष्ठात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह है ईश्वर, मैं ही हूं, यानी जीव ही परमात्मा है, इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पंचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पंचम पंच के श्री मणि रत्नवाला में 136 पृष्ठ पे ये यहां इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहां देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहां गया, अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहां रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी, 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे दसवां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शंकर पंचके में, पंचक में। यहां ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति, ये संस्कृत है। यहां अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने, वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस या करनी चाहिए। देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। ये उवा बाई बकरे है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्री मद्भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को? तो श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आपका क्या मानना है, परमात्मा साकार है या निराकार?
परमात्मा निराकार भी है साकार भी है, कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया है अजो पिसन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृति सामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। हे अर्जुन, मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, पर अपनी सच्चिदानंद लक्षणा स्वरूपभूता प्रकृति का बिना त्याग किए ही अपनी योग माया से अवतार धारण करता हूँ। तो अवतार धारण करने को साकार कहते हैं, और जो अवतारी है वो निराकार है।
अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार।
तो शंकराचार्य जी, परमात्मा साकार है या निराकार? यदि दोनों स्थिति है तो स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार साकार है और किस प्रकार निराकार।
मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने, यह जगत साकार है सर्वथा नहीं, जगत का जो पृथ्वी पानी प्रकाश, ऊपर से बोलें तो तेज जल और पृथ्वी का जो भी कार्य है वह नेत्र गोचर है, रूपयुक्त है, उसको व्यक्ति साकार कहते हैं। जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, किसी अंश में साकार किसी अंश में निराकार है। जैसे वायु निराकार है अर्थात निरूप है, आकाश निराकार है अर्थात निरूप है। तो भगवान ने बताया कि मैं वह हूं जिस अव्यक्त मूर्ति से या नाम रूपात्मक जगत व्याप्त है। जैसे घट कुल्लर सकोरे इत्यादि मिट्टी से व्याप्त होते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि जगत भी सर्वथा साकार नहीं है, निराकार भी है साकार भी है। इसी प्रकार से हमारे भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार है। आगे
तो शंकराचार्य जी, क्या आप प्राणों को भी सत्य मानते हैं?
परम सत्य।
अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार।
आपको क्या लगता है कि परमात्मा साकार है या निराकार?
परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, तीन भी है।
अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार, और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार।
परमात्मा साकार है या निराकार, यदि दोनों स्थिति हैं तो किस प्रकार से स्पष्ट कीजिए।
नहीं, वैसे परमात्मा वस्तुतः निराकार है, निराकार है यही वास्तव है, लेकिन भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं, ये तो वास्तव है।
अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार।
संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है।
आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं।
अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। आप पुण्यात्मा आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं, इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है, क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका, वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले तो पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था, जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ, ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ, और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ, लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। तो हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन, ये कहते थे कि हम पुराणों वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों वेदों और गीता जी का। तो पुण्यात्माओं, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है वा निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां उसे तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं, और जब यहां प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार है ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है परमात्मा, नर आकार है, मनुष्य दृश्य सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को और शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, पवित्र वेदों में। अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर बंदी छोड़, पाप ना सके। अभी दिखाते हैं, देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 कट्ठा ही अनुवाद है, और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं, एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवादकर्ता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम करा और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा, और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते, और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिया, उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी दड़ंगा के रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नीतन्यों कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरों पर करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रियों पर। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने यहां कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, इन महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ये 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाषे, ये 36वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, ये यजु शब्द है, एक दो अपसर्ग लगा रखे हैं इसके, इसका यहां अनुवाद है इसी में महर्षि दानंद ने किया है, यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो जहां पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव, वो लिखना पड़ेगा जहां प्रसंग बस परमात्मा की जहां महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव, और जहां काव्यकार की महिमा में वहां कवि शब्द प्रयोग है तो वहां काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहां पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 कट्ठा ही अनुवाद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है, गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर, ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर, और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहां लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहां पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है, तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कर्ण लग गया, देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते हैं कबीर साहब, तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलू वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलू, वो वेद जानते नहीं, क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्सी पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है, ओम नाम का जाप है, पांचों यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो यहां फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहां आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा, यहां कबीर देव यानी कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है, वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है, तीसरे पृष्ठ पर। अब वह परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी सतलोक के भी 3 डिवीजन है, जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है, ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 और मंत्र नंबर 1 में जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों का नाश करने वाला हरण करने वाला वह राजे राजा के समान अब देखो 269 पे पढ़ रहे हैं हम आगे 270 पे चलेंगे 270 पे आ गया राजा के समान दर्शनीय है देखने जोगा है साकार है मनुष्य दृश्य है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्देमान हो रहा है वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहां देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं पहला पढ़ लिया हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप सच्चा ज्ञान देने के लिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो अच्छी आत्माओं को मिलते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा आप कबीर देव हैं आप कबीर देव हैं कबीर साहब हैं शुद्ध स्वरूप हैं हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें अपना आत्माओं। अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी ऊपर तेजो में धूलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है और मनुष्य दृश्य राजा के समान दर्शनीय है वहां से चलकर आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है परमेश्वर कबीर साहब ने काशी वाले दानक परमात्मा ने काशी वाले जुलाहे ने की तो हुई इज गॉड कबीर इज गॉड अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ परमात्मा सह शरीर है अपनात्मा वेदों में यहां तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं वो कबीर बंदी छोड़े देखना ये यजुर्वेद ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान बोन रामदान नई दिल्ली ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं ये देखना पांचवा अध्याय यजुर्वेद भाष्य यहां है पांचवें अध्याय का ये 32वां श्लोक है 32वां इसमें क्या लिखा है उसीग असी कबीर अंगारी असी इसको कबीर कहो कबीर अंगारी असी बंभारी अवसुर असी दोषवान सुधन्यो असी और फिर यहां क्या दिखा है रत धामा सवर ज्योति अभी इनका अनुवाद पढ़ेंगे हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु अंगारी माने पापों के शत्रु अरि माने शत्रु अग माने पाप पापों के शत्रु पाप नाशक पापों का नाश करने वाले कवि या लिख दिया कवि ये कबीर देव ये देखो कबीर हम कबीर कहते हैं इसको कबीर देव हैं आप कबीर देव हैं और बम भारी माने बंधनों के शत्रु अरि माने शत्रु बम माने बंधन आप बंदी छोड़ हैं बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं और आप रत धामा सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में लोक है कौन सा रत धामा सत धाम युक्त असी माने हैं रत माने सत ये लिख रहे हैं खुद अर्थ रत माने सत और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे, आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोक वासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा अपनात्मो, ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। क्या इनको वेदों का सदग्रंथों का ज्ञान है? अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बकरे है। इनके कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का? इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है वा निराकार? तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वो से तो निराकार है, यहां आता है ना, प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार है ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है परमात्मा, नर आकार है, मनुष्य दृश्य सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को और शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। तो परमात्मा कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उलटा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उलटा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
नमस्कार सत साहब।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
शंकर दास।
सर कहाँ से आए आप?
मैं जिला रोहतास बिहार से आया हूँ।
सर शिव शंकर दास जी क्या काम करते हैं आप?
मैं इस समय 5 कंपनियों में काम करता हूँ, कॉपरेटिव बैंक, सहारा, LIC, शाहजी और एल्केमिस्ट।
सर परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी की पूजा करता था, उनको कीर्तन आदि करता था, पूजा पाठ करता था।
तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
जो बताया कि 3 देवा के करती भक्ति, इनको कभी न भक्ति मूर्ति, जो प्रारंभ में लिखा हुआ है कि जिसको जितना लिखा है पुण्य उतना ही मिलेगा, जितना कष्ट हुआ है उतना ही मिलेगा, तो उनके समय में वही हमको मिलता, ज्यादा कोई लाभ हमको दिखाई नहीं देता था।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आप कैसे आए?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले हमारी भगतमती आई, इसके बाद मैं 2 महीना के बाद आया। मेरी भगतमती इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से डॉक्टरी पटना से पढ़ रही थी, तो उस समय उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दानापुर से उनको किसी के माध्यम से भगत के माध्यम से मिला, तो उन्होंने यहाँ कुछ भक्तों के साथ जो दो चार गो डॉक्टर थे और हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला आया। इसके बाद हमको बताई कि मैं ऐसे ऐसे कबीरपंथी के मैंने नाम दान ले चुका हूँ। मैंने कहला कि ठीक है, ऐसे जाति से मैं ब्राह्मण हूँ तो लोग कहते हैं कि आप मुसलमान को मैंने कि तू मुसलमान हो गए तो इसमें जाति धर्म के नहीं चीजें, जीव हमारी जाति है, धर्म कोई नहीं, नारा हिंदू मुस्लिम सिख है आई और धर्म ही नया, तो इसमें जाति के सवाल तो नहीं पैदा होती है। तो मैं उनको छोड़कर मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी आश्रम चलता हूँ, वहाँ जानूंगा कि क्या ज्ञान है क्या नहीं है, कि हम लोग समाज में शादी ब्याह करने में थोड़ा दिक्कत होती है, दहेज लेना देना तो उसमें हम लोग को सोचना पड़ता है। मैंने आया उस समय ये महेंद्र जी भगत जी उनसे जो हमको दिखते थे उनसे कही, बोले कि ये परमात्मा छोड़ दो, ये तो आपकी जश की बस की बात नहीं है और समाज इसमें हर एक भगत मिलेंगे तो इसलिए चिंता आपको नहीं। तो मैंने परमात्मा भगत जी को बात तो समझ कर और मैंने बात को मान ली और यहाँ नाम दाना कर ली।
सर पहले आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और आप कह रहे थे कि तीन देव की जो करते भक्ति उनको कभी ना हो मुक्ति, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला आप बता रहे थे। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लिया, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
भक्ति से हमको बहुत लाभ हुआ। पहले जब मैं यहाँ सतनाम लेकर गया 20 अक्टूबर 2011 को, तो जिंद स्टेशन पर जब 9 रात के 9-10 बज रहे थे, उस समय जब नाम सतनाम मंत्र का नाम लिया तो मेरे पास बिहार से कोई भगत नहीं आया था, मैं अकेला आया था। अब उस समय लोग आर समाज और पुलिस की सरकार मिली हुई थी तो मैं डर रहा था, अचानक क्या हो कि मेरे कान से खून बहने लगा, मैंने घबरा गया कि इस 10 बजे रात को आखिर किस डॉक्टर के पास जाऊं, कहां जाऊं, मैं संभव पर अब मैं क्या करूं। तो कुछ देर के बाद में याद आया कि हमारे परमात्मा कहते हैं कि जब किसी पर आपत्ति आ जाए, किसी प्रकार की संघट आ जाए तो सतनाम मंत्र का जाप करे। मैं हाथ धो कर और स्टेशन के अंदर आया और सतनाम मंत्र का जाप करने, कुछ ही देर 10-15 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरा खून बहता हुआ बंद हो गया। तो मैंने उसमें पूर्ण विश्वास हुआ कि नहीं, हमारे परमात्मा में बहुत शक्ति है, इसे और दृढ़ विश्वास हो गया और मुन हमको खून बहता ठीक हो गया और घर गया तो अपने परिवारों को बताया कि ऐसी ऐसी हमारी घटना घटी। इसके बाद दूसरी लाभ, मैं 20 अप्रैल 2012 को मैं 11 बजे रात को घर पर हम भगतपति और परिवार सोए हुए थे, 11 बतलात को हमारे घर में बहरे से लाइन मैंने टंगा था, लाइन लिया था, वो लाइन गाय थी वहाँ, वो किसी तरह टच किया तो उस पर बारा, तो मैंने सोचा कि कोई लड़का गिर गया, बोला तो कोई बोला नहीं, फिर सो गया। फिर 2 बजे रात को फिर झटका दिया गाय को तो उसे हबड़ा कर गिर गई, तो मैंने उठा समझ गया कि नहीं लाइन कहीं मारा है, देखा कि गाय को लाइन मारा है, गाय कहाँ पर रही है, मैंने उसको तार को इसी तरह से उठाया और नोच दिया। इसके बाद में मेरा हाथ यहाँ से तार में फंस गया, मैंने कब लाइन हमको मारा मैं पता नहीं, फिर उठकर मैंने गाय को लाइन छुड़ाकर बाहरी तार को फेंक दिया। इसके बाद हम और एक भतीजा था उसको गाय को पीठ को मले, आधा घंटा के बाद ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि मैंने लाइन तो बाहर फेंक दिया है, किसी और व्यक्ति को मार देगा, मैंने जाकर बाहरी देखा तो पोल पर से वो लाइन था वो आप रूपी ऑक्सी में वो निकाल कर इस तरह से लटकाया फंसा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब ये गिरता तो दूर रोड से इधर आता, लेकिन जियो करके रसी का विषय आया, ये हमारे परमात्मा की ही दिन है जो स्वयं हमारे उसको और हमारे परिवार को सभी को मरने से बचा लिया है। इसके बाद फिर 2013 में जब हम आ रहे थे डेहरी ओनसोन से, तो हमारे पास गाड़ी में 3 लाख रुपया था, हम किसी जमीन खरीदने के लिए दे रहे थे, अचानक को हमारा गाड़ी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर गया, लेकिन हमको तरीक भी खोच नहीं आया, तो इससे हमारी दृष्टि भक्ति बढ़ती गई, इससे हमारा लाभ है तो वहां मर जाते। फिर इस एक दिन और मैं 2 लाख रुपया लेकर शाहजी बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था, वापिस सब गांव का पैसा था, और क्या मैं ट्रक से साइड लेकर जो ही भागा उधर से एक भैंस आई और हमें धक्का मार दिया, मैं गाड़ी तो मिल गई, मैं बुझाया ना कि मैं क्या हुआ, एक वो नाला था गाड़ी वहीं गिर गई, मैं नाला के उस पार खड़ा हो गया, पता नहीं चला कि किसने हमको वहां टांग दिया खड़ा किया, अगल बगल भीड़ हो गई, मुझे कहा पूछ क्या हुआ क्या हुआ, चोट तो नहीं आई है? हम कहे नहीं भगत जी, चोट नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट आया नाली से फायर और गाड़ी स्टार्ट किया और अपने ऑफिस में जाकर सभी पैसा को जमा किया। इस तरह से हमारे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी की शरण माने में ये सब हमको लाभ मिला है।
सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
समाज को संदेश यही देना चाहता हूँ, विश्व के सभी भाइयों बहनों संतों को कहूंगा कि मान बड़ाई छोड़कर और हमारे पूर्व परमेश्वर कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी बरवाला आश्रम आए हुए, उनको आकर नाम दान लें और अपना कल्याण कराएं।
जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार।
आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं?
मानते हैं।
जी बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है?
वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरी देवी।
क्या श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नारायण भगवान नारायण जी वही भगवान है?
ऐसा है कि श्री कृष्ण जो है वो परब्रह्म परमात्मा के अवतार है, विष्णु भी उन्हीं के अवतार है।
इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, वो कौन है?
वो अपने ही स्वरूप की साधना करते हैं।
हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तमगुण है, क्या आप इससे सहमत हैं?
ऐसा है कि एक ही परमात्मा है, ये तीन गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सत्गुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए तमोगुण लेकर शिव बन जाते हैं।
जी आप जी का इष्ट देव कौन है?
हम लोगों का जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य पर ब्रह्म परमात्मा है वही हमारा इष्ट देव।
स्वामी जी छोटा सा प्रश्न बीच में रह गया, जैसे आपने बताया कि आपका इष्ट देव कौन है, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज उसे क्लियर
कीजिए। ये क्लियर करने की आपको वो कोई अधिकार आपको नहीं है इसका। ये कजूर क्या है कि हमसे आप सारी बात पूछ रहे हैं, जो हमारे मन की बात है, जो हमारी साधना की बात है, वो हमारे गुरु ही हमको बता सकते हैं और उसको ही हम बता सकते हैं, चाहे जिसको चैनल में बताने की चीजें थोड़ी है।
ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपए। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता है। ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित हैं श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी।
अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार।
तो शंकराचार्य जी पूरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है?
श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं।
शंकराचार्य जी आपका इष्ट देव कौन है?
सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हमारे इष्ट देव हैं।
तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को भी सत्य मानते हैं?
परम सत्य।
ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपए। ये हैं नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं।
अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार।
क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं?
सत्य है।
बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है?
भगवान नारायण।
भगवान नारायण। और उनकी देवी?
देवी पूर्णांबा।
आप जी का इष्ट देव कौन है?
इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है, हम सभी हमारे उपासना करते हैं, पांच देवता होते हैं।
ठीक है महाराज जी, ये बताइए कि बद्रीनाथ मठ का महावाक्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है?
अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद में है, अयम आत्मा ब्रह्म।
क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु है अर्थात नारायण भगवान है?
विष्णु नारायण भगवान एक ही है, श्री कृष्ण वही है, नारायण भी वो है, विष्णु भी वो है।
हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण है, विष्णु जी सदगुण है और शिव जी तमगुण है, क्या आप इससे सहमत है?
ऐसा है, रजोगुण तमगुण सतगुण ये तीनों देवता एक रजोगुण एक सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी और पालन करते हैं भगवान विष्णु को सतगुण और श्रृंगार करते हैं भगवान रुद्र तमगुण।
हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं।
हाँ करते हैं, ठीक बात है।
तो वो कौन है, मतलब किनकी साधना करते हैं?
भगवान विष्णु जो है भगवान राम की साधना करते हैं, भगवान सभी राम और भगवान राम जो है भगवान सभी।
उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है, क्या अंतर लगता है आपको?
उत्तम जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम।
गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है?
अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, संत उत्तम ही है।
यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपए। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं।
अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार।
क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं?
नहीं, पुराण सत्य है, पुराण को हम कैसा असत्य माने, हमारे लिए पुराण सत्य ही है।
क्या श्री कृष्ण विष्णु जी अर्थात नारायण भगवान है?
हाँ, भगवान नारायण का ही अवतार श्री कृष्ण है।
हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सदगुण है और शिव जी तमगुण है, क्या आप इससे सहमत है?
ठीक है, वो शास्त्र वैसा ही है, वही सही है।
हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं?
नहीं नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते।
आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है?
मैं कहा था ना, जो एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता ऐसे कैसे होता है, एक ही भगवान है।
ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपए। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं।
अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस दी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा, یہ وہ پرلے نہیں ہوگی، یہ ادھرم کی پرلے ہوگی، ادھرم کا سروناش ہوگا، اجیان کی پرلے ہوگی اور گیان کا وکاس ہوگا، یہ وہ پرلے اب سن 2012 میں ہوگی۔ کسی نے ایک شنکراچاریہ جی سے پوچھا، جی آپ کا اشٹ کون ہے؟ کہ پرم برہم پرماتما۔ انہوں نے کہا جی تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤ وہ کون ہے پرم برہم پرماتما۔ وہ کہتا تمہیں کیا ادھیکار ہے پوچھنے کا، اور یہ پوجے کس نے لداس بتاؤ گے، ان کے پوجے دیو کون سے، یہ دیکھیے لما دکھائے دو ان کے اشٹ دیو، یہ ہے ان کے اشٹ دیو، دیکھیے گا انہیں کے لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی سرمان لاگ گئے، یہ سری ماتا کمپورسس پرائیویٹ لمیٹڈ کا پرکاشن اساڑھ پورنیما سموت 2066 جولائی 2009 کی ورس 8 انک 97 مولیہ 10 روپے۔ یہ ہیں نارائن یعنی شری وشنو جی، یہ ان کے بھگوان ہیں شری وشنو جی اور شری برما جی اور شری شنکر جی، یہ تو ان کے پوجے دیوتا ہے۔ اپنا آتما داس کے ستسنگ میں مکھے طور پر تین برہم ہوتے ہیں، تین برہم یعنی تین پربھو، تین پرش، ایک سربرہم، ایک اکثر برہم، ایک پرم اکثر برہم۔ دوسرے شبدوں میں ایک سرپرش، ایک اکثر پرش اور ایک پرم اکثر پرش۔ تیسرے شبدوں میں ایس، ایشور، پرمیشور، یہ تین مکھے پربھو ہیں۔ مکھے تو ویسے ایک ہے لیکن ہمارے سدگرنتھوں میں جو وشیش گیان دیا ہے ان تینوں کے وشے میں، اور اس کے پشچات تین پربھو اور مانے ہیں، رجگن شری برما جی، ستگن شری وشنو جی اور تمگن شری شنکر جی، اور آدی شکتی پرکرتی دیوی یہ درگا ہے۔ ان کے بعد پھر بہت سے دیوتا ہیں جو بھگوان کی بھکتی کر کے ہی کچھ انہوں نے اپنے ٹائر میں ہوا بھر لی، یعنی پرماتما کی کچھ بھکتی سنگھرت کر کے اور وہ کچھ سدھی یکت ہو کر کے انیہ پرانیوں سے شریشت بنے دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی دیوتا ہیں۔ یعنی شری برما جی، رجگن شری وشنو، ستگن شری شیو جی، تموگن، یہ انیہ دیوتاؤں میں ہیں، اور یہ ہمارے اس تتو گیان کے اندر مکھے طور پر پربھو نہیں گنے جاتے۔ دوسرے شبدوں میں داس کہے کہ یہ بھگوان نہیں ہے، یہ ایس نہیں ہے، سوامی نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، تو یہ بات جن سادھارن کے گلے اترے نہیں، وشیش کر پوتر ہندو سماج کے پنکرمی پرانیوں کے، کیونکہ ہمارے دھرم گروہوں نے ہمیں الٹا پاٹھ پڑھا دیا، اور ایک دن سے نہیں ہزاروں ورسوں سے یہی پاٹھ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ برما وشنو مہیش سرویشور ہیں، ان کا کوئی جنم مرتو نہیں ہوتا، ان کی کوئی ماتا پتا نہیں ہے، یہ سوئمبھو ہے۔ تو جس کارن سے داس نے یہ شبد بول دیا کہ یہ بھگوان نہیں ہے، یہ بات ایک بہت وواد پرست ہو جائے گی یدھی پرمان نہیں دکھایا گیا۔ آپ کو پرمان دکھاتے ہیں، ایک سمے اس شیو پران کے اندر لکھا ہے، پوتر شیو پران کے اندر، کہ شری برما جی رجگن اور شری وشنو جی ستگن کا آپس میں وواد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ برما جی کہتے ہیں کہ میں سب کا اتپتی کرتا ہوں، وشنو تو میرا پوتر ہے۔ وشنو جی کہتے ہیں تو میری نابھی کمل سے اتپن ہوا ہے، تو میرا پوتر ہے۔ وہ کہتا میں تیرا باپ، وہ کہتا میں تیرا باپ، دونوں کا یدھ ہو گیا۔ اس یدھ کی شانتی کے لیے اس کال بھگوان نے جو ان کا پتا ہے، جس کو یہ سدا شیو کہتے ہیں، पौराणिक और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजो में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव जो इनका पिता है ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास कहे तो विदग जा, इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक, श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, इतने यहां से प्रकाशित है। हम इसके ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग एक छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहां के इसे ब्रह्म ज्ञानी है देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर से शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा, इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा, गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाना तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं? तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं,